चंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्रप्रजन्तमनसे समपेतकृत्वैपायनो विरहकातरया जुहाव सूत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना वर्णों में आदरणीय और गुरु है, यदि कुछ न भी करें तो भी लोगों की धारणा है। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर वो सबका आदरणीय और सबका श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे हमारे धर्म में कुछ कुछ ऐसी बातें, भक्त यदि नीचे के कुलों में उत्पन्न हो, शुक्र हो, यहाँ तक कि अंतर जाति में भी यौम समाज के रूप में भी यदि अवसरित होता है और उसमें भक्ति है, वो ब्राह्मणों का भी गुरु है। शास्त्रों में ऐसा नारद जी की जाति नहीं देखनी है, व्यास जी की जाति नहीं देखनी है, वो परम भगवत भक्त थे। कृष्ण वाले कुल में जन्मे थे, जादव कुल में जन्मे थे, ये विचार नहीं है। वो तो स्वयं ब्रह्म है, उनके भक्त भी जाति कुल से ऊपर होते हैं और आदरणीय होते हैं। इस चीज को समझाने के लिए ही भगवान ने प्रेरणा देकर के दुर्वासा जी को भेजा महाराज अम्बरीश के यहाँ। दुर्वासा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, यहाँ तक कि भगवत अवतार भी थे, वे शंकर जी के अंश से पैदा हुए थे। दुर्वासा जी अत्रि के गर्भ से पैदा हुए थे और उनकी मैया का नाम अनुसुईया जी था। इतने उच्च कुल में जन्मे थे और बड़े भारी योगी थे, उनको ब्रह्मर्षि कहा गया, किंतु वो एकादशी करते थे कि नहीं और एकादशी का महात्म्य जानते थे कि नहीं, ये हमें पता नहीं। भगवत ने तो ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने सोचा स्वागत चाहूँ वो हो जाता। उन्होंने अम्बरीश महाराज जी को साधारण एक भक्त विभक्त समझा, किंतु वो नहीं जानते थे कि हमसे भी श्रेष्ठ हैं अम्बरीश महाराज। क्षत्रिय कुल में होने पर भी, राजा के होने पर भी, ये हमसे श्रेष्ठ जिस चीज को अनुभव नहीं कर पाते थे वो क्या और भी बहुत से लोग। इसलिए भगवान ने प्रेरणा देकर के महाराज अम्बरीश के घर पर उनको भेजा, जाओ आज जरा ये विचार हो कि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मभक्ति बड़ा है न भक्ति या भक्त बड़ा है। वहां पर गए, द्वादशी का दिन था, इन्होंने तो भक्त महाद्वादशी का व्रत किया था अम्बरीश महाराज जी ने, पारण करने जा रहे थे। यदि समय पर दूसरे दिन पारण न किया जाए तो एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता, उसका फल चला जाता। इसलिए द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के बाद में या द्वादशी के व्रत में के बाद में पारण करना होता है। समय के भीतर द्वादशी के अंतर्गत ही पारण होना चाहिए, त्रयोदशी न। और उस दिन सूर्योदय के बाद में थोड़ी सी 24 मिनट के करीब में केवल द्वादशी थी, इसके बाद में व्रत समाप्त। इसके बीच में कुछ साधु जी का भोग दुर्वासा जी इसी समय में पहुंचे। ये देखकर के बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि महात्मन आज तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषि महर्षि आ गए, ब्रह्मर्षि आज आप हमारे घर में अतिथि होकर के ठाकुर जी का प्रसाद अन्न दें। मैं भी द्वादशी का व्रत महाव्रत रखा है, मैं भी अब आपके लेने के बाद में मैं पारण करूंगा। मैं ये ठीक है, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। और उन्होंने देरी लगा दी, वो समय भी पार होने लगा। अम्बरीश जी ने सोचा कि इस ब्रह्मभक्ति का आदर किया जाए अथवा द्वादशी रूपी भक्ति का आदर किया जाए। यदि ब्राह्मण को खिलाए बिना मैं कुछ ले लेता हूँ तो सब ब्राह्मण की अवज्ञा हो जाएगी और इससे हमारा कुछ अनिष्ट हो सकता है लौकिक। किंतु द्वादशी का पारण हम समय पर नहीं करते हैं तो हमारा परमार्थिक भक्ति की हानि होगी और हमारा जन्म जन्म के लिए मैं दोषी हो जाऊंगा भक्त के चरणों में। इसलिए भक्ति नहीं छोड़ना है, भले ही जो कुछ हो जाए, लौकिक हमारा कुछ अनिष्ट हो जाए कोई बात नहीं, देख लिया जाए, किंतु भक्ति हम हानि नहीं देने होने देंगे। इसलिए उनके आने के पहले ठाकुर जी का चरण अमृत पानी ले लिया, जिससे व्रत भी रहे, पारण भी हो जाए, ऋषि का सम्मान भी रह जाए, सब कुछ ठीक हो, किंतु भक्ति के चरण में अपराध न हो। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा जो ये तो पानी ले लिया, ओ हमारा अनादर किया ब्राह्मणों का, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। उन्होंने अपनी शाम पास देने की चेष्टा की, आकर के ये तुम हमारा आदर तुमने नहीं किया, मैं श्रेष्ठ ब्रह्मभक्ति हूँ, तुम एक राजा हो साधारण क्षत्रियों में और थोड़ा सा भक्ति कर लिया तो पाखंडी बन गया और इसी के नाते ब्रह्मभक्तियों का ब्राह्मणों का आदर नहीं करता है। जाओ एक केक टुकड़ा निकाला अपने जटा का और तोड़ करके फेंक दिया, तो जाओ उसे मैं जला जाओ। महाराज अम्बरीश जी हाँ जो करते सुदर्शन भक्तों की रक्षा करता है, बस उसने एक सेकंड के अंदर में उसके प्यार राक्षसी को जला दिया और इनको भी ब्रह्मभक्ति को जलाने के लिए आगे बढ़ा। जैसा कि ये क्या हो गया, ये सुदर्शन जी इस भक्ति की रक्षा कर रहे हैं, भगे और ये नहीं भगे कहीं। घूमते घूमते शंकर के यहाँ गए, ब्रह्मा के यहाँ गए, सब जगह कोई नहीं रक्षा की, भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा कि मैं रक्षा नहीं कर सकता, जाओ अम्बरीश के लिए। अंत में लाचार होकर के वहां पर क्या तात्पर्य, ब्राह्मण का आदर है यदि भक्ति उसमें है, और ब्राह्मण होकर के भी यदि उसमें भक्ति नहीं है भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति आदर नहीं, एकादशी इत्यादि का आदर नहीं करता, भगवान का नाम नहीं करता, तो ब्रह्म ज्ञान बेकार है और वो ब्रह्म योगी और वो सब बेकार है। चतुर वर्णम व्यासम गुण कर्म विभाग, ये गुण है भक्ति का गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं, उसे वह चंडाल श्रेष्ठ है जो कि भगवान का भजन करता है। उसे महाराज विदुर जी बहुत श्रेष्ठ हैं, भगवान के भक्त हैं ना। गोपियाँ गुर्जरी, गुर्जरी जानते हैं ना, गुर्जर एक होता है अहिरों में गुर्जर, तो वो गुर्जरियाँ कहलाती हैं, वो शूद्र कुल में मानी जाती है। बतलाओ तो ब्रह्म इत्यादि सभी उन गुर्जरियों के चरण की धूलि की वंदना करते हैं उद्धव इत्यादि, और कृष्ण स्वयं उसके सामने ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मत्व सहज स्वीकार करता है। यही चीज भागवत में दिखा है, भगवान ने उसको पीछे करके दिखा है। ये भागवत में जो दिखा गया है वो परम सत्य है। नीच से नीच कुल में भी जन्म लेने पर यदि कोई भगवान का नाम करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, एकादशी करता है, तो वो सिर्फ ब्रह्मज्ञानी करते हैं। और ब्रह्मज्ञानी होकर के भी भक्ति का आदर नहीं करता, भक्तों का आदर नहीं करता, एकादशी पालन नहीं करता, तो वो दूर से करती है, उसको कोई आदर नहीं, लौकिक संबंध से नहीं देंगे, भक्ति रहती नहीं करती है, इसे भक्ति का आदर है। ये चीज देखिए अभी शुभानंद जी अपने प्रसंगों को पूरा करें, अभी जन्म की लीला आएगी, इसके बाद में कृष्ण लीला के संबंध में हम लोग आठवां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी हुई, कंस ने सुना सुन करके आकाशवाणी पर संत को विश्वास हुआ कि नहीं? आधा विश्वास किया। आकाशवाणी ने कहा ये आठवां पुत्र इसका जरूर तुम्हें मारेगा। अब वो यही सोच रहा है कि आकाशवाणी ने ये तो कहा किंतु मैं इसको झूठा बना दूंगा, मैं देवकी को ही मार डालूंगा, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे बांसुरी कहाँ से रहेगी यदि बांसुरी ही न रहे? तो देवकी को ही खत्म कर दूं तो आठवां गर्भ किसका होगा? वो होगा ही नहीं, फिर हमको नहीं मार पाएगा। ये आसुरिक विचार है। भगवान की बातों पर, शास्त्र की बातों पर, गुरु की बातों पर वो विश्वास नहीं करते। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं देवता और एक होते हैं असुर। कंस के जितने पक्ष वाले हैं सब असुर हैं, कृष्ण के पक्ष वाले जितने हैं सब देवता हैं। भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान को मानते हैं, वेद शास्त्र भागवत और गीता और रामायण पर जिनको विश्वास है वो तो देवता हैं। जो लोग वेद उपनिषद भागवत पुराण भगवान के नाम पर और भक्तों पर विश्वास नहीं रखते, इनका विरुद्ध आचरण करते हैं, वो हैं असुर। उस समय कंस इत्यादि कुछ लोग असुर थे। राम के समय में रावण असुर था, प्रहलाद जी के समय में हिरण्यकश्यपु राम, ये सब असुर थे। और कलियुग में कुछ लोग ही देवता हैं, बाकी सब अधिकांश लोग असुर हैं। मैं सोच रहा था कि जैसा आयोजन हुआ है यहाँ पर कम से कम तो 10-20 हजार आदमी जरूर आएंगे, इसलिए कि ब्रज से लोग आए हैं, संत लोग कुछ कथा सुनेंगे। किंतु कुछ मिस्ट में ये लोग ही यहाँ पर आए। क्या पूना में 10-20 लाख आदमी नहीं है? उसमें 400-500 आदमी भी नहीं आ सकते थे? पूना ही में नहीं, कम सारे संसार की यही बात है। इसलिए आजकल कली काल में अधिकांश असुर हैं, देवता बहुत कम हैं। जो भगवान का नाम करते हैं, गीता पाठ इत्यादि करते हैं, भागवत की बातों पर विश्वास रख करके भगवान का भजन करते हैं, असुर लोग महामाया का भजन करते हैं, दुर्गा काली इत्यादि का, वो भी भगवान की ही शक्ति है। अभी बतलाया भागवत की ही बातें बतलाया, किंतु उनमें तरह तरह की कामनाएं होती हैं और वो लोग अंत में दुखी ही पाते हैं। भगवान का भजन करने वाला वो लोग वृंदावन में परम धाम को जाता है, जहाँ से लौट करके आना नहीं होता। कंस की क्या दुर्गति हुई ये देखो, रावण की क्या दुर्गति हुई, हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति को जो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, उसे किसी के द्वारा नहीं मरेगा, मतलब उसकी एक क्षण में क्या गति हो गई? इसलिए उन लोगों को कभी भी सुख और शांति नहीं होती जो भगवान का भजन नहीं करते, असुर लोगों को। आजकल हमारे देश में ही क्या, संसार में ये देख रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र के ऊपर बैठे हुए हैं वही यदि षड्यंत्र करें, कोटि कोटि रुपए ले लें, चोरी करें, बेईमानी करें, उस राष्ट्र का क्या होगा? ये जितने हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं प्राय सब असुर हैं, नहीं तो ऐसा बिगड़ जाता हमारा देश। मैं तो समझता हूँ कि हमारे साधारण कहे जाने वाले धार्मिक व्यक्तियों में से लोग यदि वहाँ पर राष्ट्र में राज्य करते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते, आज ये देश की दुर्दशा नहीं होती, यदि गीता भागवत रामायण को जानते। गीता रामायण का पालन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से नहीं डरते, आज इसलिए ये हमारे राष्ट्र की या दूसरों राष्ट्रों की दशा है। इसलिए ये सब असुर चित्त वृत्ति के लोग हैं। भगवान का थोड़ा सा भी डर होता जब मैं ऐसा चोरी करूंगा तो भगवान हमें देखेंगे, जान लेंगे और हमें पीस करके शत्रु बना डालेंगे, हमारा सर्वनाश कर देंगे। इस लोक और परलोक में हमें दुख भोगना पड़ेगा। हम जानते हैं कि भारत, हमारे भारत में से अभी भी लोग हैं जो धर्म से डरते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक पैसे की कोई चीज भी नहीं ले सकते, कोटि कोटि रुपयों को भी नहीं छू सकते, माता पिता का आदर करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, किंतु उन लोगों को कोई पूछेगा नहीं, उन लोगों को वोट नहीं पड़ेंगे। जो जितने प्रकार के बदमाश, चोर, डकैत हैं, ऐसे लोग हमारे रक्षा मंत्री होंगे, ऐसे हमारा राष्ट्र के कर्ण ये सब होंगे, तो देश का क्या होगा। इसलिए इसमें दिखलाया, जिस राष्ट्र में गायों का आदर नहीं है, जिस राष्ट्र में गीता भागवत का रामायण का पुराण का आदर नहीं है, जिस राष्ट्र में माता पिता बूढ़े लोगों को सम्मान नहीं है, गायों का सम्मान नहीं है, शास्त्रों का सम्मान नहीं है, वो रसातल दे दिया जाए। आज हम यही सब आप लोग थोड़े से संख्या में होने पर भी आप लोग भगवान का भजन मत छोड़ेंगे, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, जैसे देवकी और वसुदेव को हुआ, किंतु पीछे क्या हुआ, धर्म ने और भगवान ने उनकी रक्षा की। कंस चाहता था यही सात आसमानी को हम झूठा बना दें, मारने के लिए गया, सोचता था जो मैं इसे मार डालूं, और वसुदेव महाराज ये निश्चिंत थे, ये नहीं कदापि नहीं मार सकता, जितना उछले कूदे मार नहीं सकता, क्यों, आकाशवाणी ने कहा है इसका आठवां गर्भ उसे मारेगा, ये जरूर होगा ही, इसलिए इसको थोड़ा सा बुझाया जाए, समझाया जाए या कोई उपाय किया जाए, किसी हालत से ये मार नहीं सकेगा। तो यह है भगवत भक्त, वो भगवान की बातों में, धर्म की बातों में विश्वास है, भगवान के नाम पर उनको पूर्ण विश्वास रखता है। धर्मो रक्षति धार्मिकम्, जरूर धर्म धार्मिक की रक्षा करेगा। इसलिए ये कंस जितना भी उछले कूदे सब कुछ करे, देवकी को नहीं मार सकता, इसलिए कहा अरे आप क्या कर रहे हैं, इतने समझदार होकर के मरना तो आज न कल न परसों मरेंगे, देवकी का यह पुत्र जब भी होगा उत्पन्न या न हो, आप बचे रहेंगे, आज तक कोई बचा रहा जगत में जिसने जन्म लिया, मरना तो है इसके हाथ से, नहीं तो अपने आप मरेंगे आप, सभी लोग का ऐसा ही है, इसलिए इसे डरने की क्या जरूरत है, मरना तो आज या 100 वर्ष के बाद में मरना जरूरी है। इस लड़की की हत्या क्यों कर रहे हैं, ये तो आपकी बेटी के समान है, आपकी बहन है, इसका जो यदि लड़की हुई तो मैं इस लड़की की शादी आपके लड़के के साथ में कर दूंगा, आप चिंता मत करें, मैं सारे लड़कों को बच्चों को जो कुछ जन्मेगा आपको दे दूंगा, आप मार डालना जो कुछ करें, अभी क्यों मारते हैं। उन्होंने सोचा यदि मारेगा तो नहीं, यदि मान लिया इसको लड़का ही नहीं हुआ तो क्या करेगा, आज लड़का हुआ तो ये जब मारेगा तो ये क्या कर सकेगा, ये रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसे मारो मत, लड़का होगा लड़के से डर है, हम तुमको दे देंगे तुम मार डालना, उसने विश्वास कर। इसके बाद में कृष्ण का जन्म, रात में क्यों जन्म हुआ और 8 महीने में क्यों जन्म हुआ, बतलाया बच्चे ने, ब्रह्मचारी जी ने बताया, रात में सब लोग सो जाते हैं, कंस को छलने के लिए यदि 10 महीने पर बच्चा पैदा होता है ये उसको पता था, इसलिए सोच रहा है तेज तो निकल रहा है, बच्चा तो होगा, गर्भ है इसको, किंतु अभी 2 महीने की देरी है, और वो भगवान ने उसको धोखा दे करके, उसको बहाना बना करके 2 महीना पहले ही गर्भ से निकल आए, रात इसलिए कि सब लोग सो रहे हैं, वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, कुछ कुछ पहरेदार भी बड़े सुख से सो गए। ऐसी स्थिति भगवान ने पैदा कर दी, सब अपने घरों घरों में कवाड़ बंद करके वर्षा के कारण और रात के कारण भीतर में थे। कंस भी निश्चिंत होकर के सो गया और ठीक उसी समय में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? दो प्रकार की बातें हैं भागवत में लिखते हैं, ये देवकी और वसुदेव जी कश्यप और अदिति, उन्होंने मांगा था कि बेटा हो तो आपके समान, भगवान के समान। भगवान ने कहा था भाई हमारे समान तो जगत में कोई है नहीं, तो मैं ही तेरा बेटा होकर के आऊंगा। क्यों आऊंगा? भगवान जानते हैं, भगवान का जन्म का बहुत सा कारण है, जिसमें साधारण रूप में ये कारण है कि जब जब जगत में अधर्म होता है, धर्म की हानि होती है, साधु संतों और गैयों पर जो कुठाराघात करते हैं उसकी हानि करते हैं, तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए वो अवसर देते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। ये साधारण नियम है। कृष्ण इसलिए जन्म नहीं लेते, क्यों? यह काम तो उनके अंश के अंश के अंश के अंश के चलने की धूलि चाहिए हो जाएगा। महा विष्णु इत्यादि ही इस काम को कर देंगे, विष्णु ही कर देंगे, कृष्ण को इसके लिए अवसर, उनकी इच्छा मात्र से ही महाविष्णु जो गर्भोदशाई में शयन करते हैं वो भी ये काम करते हैं, क्षीरोदशाई में रहने वाले वो विष्णु भी करते हैं। फिर इनका जन्म ऐसी लीलाओं को प्रकट करना है इसी बहाने जो जगत में कभी भी अवतरित होती, ऐसी रस लीला रसमय लीलाएं वो करेंगे। बच्चे जैसा जन्म लेंगे, मट्टी खाएंगे, सखाओं के साथ में खेल करेंगे, यशोदा जी का स्तन पार करेंगे, यशोदा जी उनको मट्टी तोड़ने के लिए उन्हें बोखल से बांध देंगी और गोपियों के साथ में मैं राख इत्यादि करूंगा, जब वो रुक जाएंगी तो मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनके पहिया पढ़ूंगा, ऐसी लीला प्रेम की दिखलाऊंगा जिससे जगत के लोग सम्मिलित हो जाएंगे और मुझको उसी रूप में हमारा भजन करें, ये प्रधान उद्देश्य है। और अनुसंगिक रूप में युग धर्म की प्रतीक्षा करना, ये कृष्ण का काम नहीं है, उनका वो परम रसिक है, रस का आस्वादन करना ही, विविध प्रकार के भक्तों का रसास्वादन करना ही कृष्ण का काम एकमात्र है। इस काम के लिए वो मथुरा में नहीं गोकुल में यशोदा देवी के गर्भ से, जिन्होंने यशोदा मैया का बंधन स्वीकार किया था, मक्खन की चोरी की, मिट्टी खाई, गोपों के साथ में गौएं चराई, रास विलास किया, ये कृष्ण गोकुल में जन्मे। और उनका जो कृष्ण का अंश है जिसको वासुदेव कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, ये मथुरा में प्रकट भय, जन्म नहीं लिया, बच्चे होकर के नहीं आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चक्रभूष होकर के खड़े हो गए, ये वासुदेव कृष्ण का। साधारण आदमी इसको नहीं समझेगा, किंतु फिर भी शास्त्र ने इन चीजों को बतलाया गया, आप लोग इस बुद्धिमान इस चीज को समझेंगे। भगवान के दो कार्य, असुरों को विनाश कर धर्म की प्रतिष्ठा करना, युग धर्म की प्रतिष्ठा करना, ये भगवान का अपना काम है, ये उनके अंश का काम है। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र जो स्वयं भगवान हैं, जिनको कहा गया थे चांद कला पुंसा कृष्ण तू भगवान, साधारण नर की भांति लीला किया, दुबिजाम सुंदर बंसी बजाई और जगत के सारे लोगों को मोहित कर दिया, का जन्म यशोदा जी के गर्भ से गोकुल में थी आधी रात को, जबकि वसुदेव देवकी को आधी रात के समय में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर खड़े थे। कैसे? 16 वर्ष की अवस्था वाली, भाई 16 वर्ष का बेटा होता है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहता है, लंबे लंबे घुघराले के समस्त अलंकारों से परिमंडित, षड़ैश्वर्य परिपूर्ण, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान कृष्ण किसी के बेटे नहीं होते, नारायण किसी के बेटे नहीं है, वो वासुदेव के रूप में वो प्रकट हुए, ये कृष्ण के अंश हैं। इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए मैं तेरा बेटा होकर के आया, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ जो पहले जन्म में हमने तुमको पर दिया, अब मैं कंस का वध करूंगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रकट हुए भगवान, इन्होंने ही कंस का वध किया, ये कृष्ण के अंश हैं। और जो स्वयं कृष्ण हैं वे भक्त रसाम है, अखिल रसाम मूर्ति हैं, परम सुंदर हैं, बंसी धारण किए हुए श्यामल अंग के, ये सब समय किशोर उम्र होती है, ये वृंदावन कभी छोड़ करके नहीं जाते, मथुरा में भी नहीं, हम लोग दोनों को एक मान लेते हैं, एक है भी तत्वता, किंतु एक साथ में कृष्ण 10-20 लाख जन्म ले सकते हैं, गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए कृष्ण कोटि कोटि गोपियों में, अंततः 16,000 गोपियों में 16,000 रूप धारण कर लिया ना, तो एक जगह एक समय में ही कृष्ण 2 जगह क्यों नहीं जन्म ले सकते। इसलिए एक रूप में ऐश्वर्य रूप धारण किया, भगवान के रूप में, पूर्ण भगवान के रूप में यहाँ माता देवकी के घर पर, और परिपर्णतुम रूप में यशोदा मैया के लाला बनकर के जन्म लिया। कैसे? तुम ही जिसाम सुंदर, नंगे केस नहीं, बांसुरी भी साथ में नहीं लिए हुए, ऐसे छोटे से शिशु और रोते हुए वहां पर जन्म लिया, और उनके साथ ही साथ में 15 मिनट के बाद में एक जोग माया भी जिनको बतलाया गया, उन्होंने जन्म लिया, जोग माया 2 जमज बेटे, एक बेटा एक बेटी, बड़ा वाला हुआ वो बेटा, और उसके 8 घंटे बाद 15 मिनट के बाद में एक जमज संतान के रूप में जोग माया जी पैदा हुई। ये परिपूर्णतम यशोदानंदन कृष्ण है, उनके अंश देवकी के घर पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, ये ऐश्वर्यपूर्ण है, सर्वांतर्यामी है, और वहां वाले कैसे हैं? ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों से परिपूर्ण है, गोपियों के साथ में कृष्ण ये जो है वो नित्य नहीं कर सकते, मट्टी नहीं खाएंगे, इनका कोई माता पिता नहीं है इसलिए प्रकट हो गए, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए मथुरा में ये रहते हैं, द्वारका में रहते हैं, ये इनकी जितनी भी लीलाएं हैं द्वारका और मथुरा की, और महाभारत का संग्राम इत्यादि, ये कृष्ण के अंश वासुदेव कृष्ण जी हैं, चतुर्भुज नारायण जी, ये इन्होंने ये सब। आप ब्रज में जो रसास्वादन किया वो कौन? यशोदानंदन नंद नंदन राधाकांत रास बिहारी, वो गोलोक वृंदावन में ऐसे ही रहते हैं सुधुर श्याम सुंदर, और वहीं से इस जगत में अवतरित होते हैं, इनको अवतार, और ये बैकुंठ में रहते हैं या द्वारका मथुरा में रहते हैं, वहां से ये द्वारका मथुरा में ही होते हैं, दोनों अपने अपने स्थान में नित्य हैं, दोनों एक होते हुए भी ना? दोनों एक होते हुए भी तत्वतः रस की दृष्टि से दोनों में वैशिष्ट्य है, इसलिए बतलाया सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से ये कथा कह रहे हैं। परीक्षित इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर के व्यक्ति कौरव पांडवों के वंश में है, पांडु के वंश में पांडु जी की पत्नी का नाम कुंती है। ये कुंती जी वसुदेव जी की अपनी खास बहन है और उनके बेटे हैं ये कृष्ण। और परीक्षित महाराज जी अर्जुन की का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का ये पुत्र है, इसलिए द्वारका से इनका संबंध है। आ रहा है समझ में? कृष्ण तो वसुदेव जी के लड़के, और परीक्षित महाराज जी कौन है? कृष्ण जी की बुआ कुंती है, कुंती का पुत्र अर्जुन, और अर्जुन का विवाह हुआ है सुभद्रा से। वो सुभद्रा से और अर्जुन से पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, इसलिए जादुओं के साथ में इसका संबंध है परीक्षित महाराज जी का। इसलिए परीक्षित जानते हैं कि मैं जादुओं के वंश में नहीं थी, कृष्ण से हमारा संबंध है इस कृष्ण से। इसलिए महाराज सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को प्रसन्न करने के लिए ये कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अरे तुम्हारी बुआ जी की थी, उन्हीं के भाई का ये लड़का कृष्ण है, इसलिए तुम्हारा उसने तुम्हारे गर्भ के समय में तुम्हारी रक्षा की। इसलिए वो कहते हैं कि ये देवकी के से पैदा हुआ, वो जो गोकुल में जो जन्म हुआ इसको छिपा दिया। उसको कहते तो वो कहते जैसे उससे तो कोई संबंध नहीं है परीक्षित का। इसलिए परीक्षित को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से कहते हैं, किंतु जब भावावेश में हो गए और जब कथा का वर्णन करने में तो भावावेश समाप्त हो गया और उनके मुख से अपने आप निकल गया, नंदस्तु आत्मजुन में जाता रहा दो, मुख से निकल गया क्या? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न में, नंद भी आत्मज उत्पन्न होने पर, आत्मज किसको कहते हैं? आत्मा वही जाए दो पुत्र, आत्मा से ही पुत्र के रूप में वही व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है, सीता ही। इसलिए ये बस ये कृष्ण नंद बाबा के आत्मज हैं, इसलिए ब्रज में इन्होंने जन्म लेने पर बधाई हुई यहाँ, और संस्कार हुआ बेटे का। संस्कार माने किसको कहते हैं? जात संस्कार। माता का पुत्र के साथ में नाड़ी छेदन होता है, यदि मथुरा में जन्म होता तो नाड़ी छेद तो वहाँ होता, वहाँ पर नाड़ी छेद नहीं हुआ। नाड़ी छेद कहाँ हुआ? गोकुल में नाड़ी छेद हुआ। और औरतों ने गाना आरंभ किया और लोगों ने गाना आरंभ कर दिया, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया। इसलिए वहां पर उनको जन्म हुआ, कृष्ण का वहां पर जन्म हुआ, छोटे से बच्चे के रूप में जन्म हुआ। और सारी लीलाएं की यही नहीं, नखल गोपिका नंदनो भमा, एक जगह नहीं हजारों जगह महाभारत के दूसरे में हरिवंश इत्यादि में ये बतलाया गया कि देवकी नाम भी यशोदा का था, इसलिए देवकी पुत्र भी यदि कह दिया तो कोई हर्ज नहीं यशोदा के लिए। और भी बतलाया देवकी का जो पुत्र ये कृष्ण बतलाया गया, ये भी देवकी जन्म बाद जैसी जन निवास हो, देवकी जन्म बाद ये लोग कहते हैं, किंतु असल में ये यशोदा जी के पुत्र। देवकी जी को कृष्ण को दूध पिलाने को कितनी बार मौका मिला? एक बार भी नहीं जन्म लिया, जन्म तो लिया वहाँ मथुरा में, किंतु देवकी का स्तनपान नहीं किया, चले गए। जब लौट करके आए कंस को मारा तो देवकी जी देख के रह गई, हाथ जोड़ करके स्तव आरंभ किया, कहे मैया तू हमें दूध नहीं पिलाएगी? पुत्र का भाव उनमें जागृत किया, मैं तेरा बेटा हूँ, और कह करके उनके चरणों में गिर गए। उस समय देवकी को वात्सल्य भाव कुछ आया, उसके बाद में अपने पुत्रों को मंगवाया कृष्ण से, पुत्र ने उनके मरे हुए 6 बेटों को ले आए। थोड़ा सा कृष्ण ने देवकी का स्तनपान किया था, थोड़ा सा कब लौटने पर या जाते समय में देवकी जी ने जब उनको जन्म हुआ, जबकि वो बच्चे बन गए और जाने लगे, तो देखा जी भूखा जाएगा, तो अपना स्तन थोड़ा सा दिया, स्पर्श कराया। उसके नाते उन 6 बेटों ने जब ही उनका दूध पिया देवकी का, सभी का उद्धार हो गया और वो फिर मर करके चले गए। दूसरे उनका उद्धार हो गया, फिर जन्म नहीं हुआ। इस तरह से कृष्ण जो संपूर्ण अंश से हैं, 16 कलाओं से हैं, नर लीला के रूप में गोलोक वृंदावन से अपने ठीक उसी रूप में ब्रज में पधारे और उनके बेटे होकर और सारी लीलाएं। और जब कंस ने इनको बुलाया अक्रूर के माध्यम से, जब आए तो आधे रास्ते में ही यमुना के बीच में ही वो लोग लौट गए और देवकी के पुत्र वसुदेव दिए, बलदेव जी और कृष्ण। ये सब बातें हम लोग पीछे सब बताएंगे, आज यहीं तक रहे। आज कृष्ण का जन्म महोत्सव हुआ, बहुत सुंदर उसमें ये हुआ। कल उनके जन्म के संबंध में और उनकी बाल लीलाएं किशोर लीलाओं के संबंध में क्रमशः हम लोग बताएंगे। गौर प्रेमानंदे।